हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 3। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता है, तो मन से संपूर्ण मलिनता और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके पूरी श्रद्धा भाव प्रेम और विश्वास के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो आपकी श्रीमद् भगवत गीता के पेज नंबर 1 पे जो मंगलाचरण लिखा है ना, उसको निकालिए सब। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितन्तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। परम सौभाग्य है हम सबका कि हम इस दिव्य साहित्य अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यह एक ऐसा दिव्य अर्थात वह इस भौतिक जगत का नहीं है, क्योंकि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश हुआ है, इसलिए यह इस भौतिक जगत का नहीं दिव्य साहित्य है। और ऐसा कहा जाता है शास्त्र में, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः पुमान। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम्, यानी कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता का शास्त्र है वो बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। और यदि कोई यह शास्त्र पठेत प्रियतः पुमान, यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को बहुत ही प्रेम से पाठ करता है, श्रवण करता है, अध्ययन करता है, तो जीवन के तमाम दुखों से तथा कष्टों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि हमारे जितने भी हम कार्य करते हैं ना, तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि हम अपने दुखों को से निवारण चाहते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। चाहे कोई स्टडी कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई घर संभाल रहा है, मतलब उसका मेन मकसद क्या होता है कि मेरे दुख और कष्ट दूर हों। बस जो भी दुख है वो दुख कौन से हैं वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हैं कि ना, जैसे स्टडी करते हैं तो उसका दुख क्या है कि मैं जहालत खत्म करके ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ। जो बिजनेस करते हैं उसका दुख क्या है कि मैं अर्न करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास धन अर्जित हो। जो घर में कोई सेवा करता है तो उसका क्या है कि सेटिंग करो और ना प्रॉब्लम्स जो ये कार्य घर वालों को सबको संतुष्ट करो, यानी कि दुखों का निवारण ही चाहता है मनुष्य। लेकिन क्योंकि वो अपनी बुद्धि यूज करता है, इसलिए कभी भी उसके दुखों का निवारण नहीं हो रहा है। वो करता है सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूअस मेहनत, सिर्फ इसलिए कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो, मेरे कष्ट दूर हो। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि ऐसे नहीं होंगे। आपको शास्त्र में जो बताया जाएगा ना, उसको जब आप पढ़ोगे, उसको जब आप फॉलो करोगे, जब भगवान के आदेशों को मानोगे, तभी आप इन दुखों से बच सकते हो। यानी कि भय शोकादि वर्जनम। और इस जीवन में सारे जितने भी भय हैं, जितने भी दुख हैं, उनसे तो आपका निवारण हो जाएगा और उसका अगला जीवन भी आध्यात्मिक होगा। यानी इस जीवन में भी सुख और अगले जीवन में कृष्ण प्राप्ति। तो ये केवल कृष्ण के शब्दों को सुनकर, कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके ही संभव है कि हम समस्त सांसारिक दुखों से भी छूट जाएं और आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करें। तो प्रेम के साथ आज हम श्लोक नंबर 3 का उच्चारण करेंगे। कृपया सहयोग दीजिएगा। चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 3। पश्येताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मैं साथ साथ आप भी पढ़िए। पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वन लास्ट। गौर से देखो शब्दों को और वर्ड्स को देखो। पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब सीन क्या चल रहा है कि धृतराष्ट्र ने अपने संजय जो साथी था उससे पहले श्लोक में पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमा कुरुवत संजय। क्या करा संजय, मेरे बेटों ने और पांडव के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के धर्म स्थल में इकट्ठे होने के बाद क्या किया। तो फिर संजय ने दूसरे श्लोक में बताया, विस्तातु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तरा आचार्यम् उपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत। के संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहा था कि तुम्हारे बेटे इतने अधर्मी हैं, तुम्हारी तरह अंधे हैं, उनको समझ में नहीं आया है धर्म, जो धर्म स्थान धर्म क्षेत्र पर वो खड़े हुए हैं उसका उनके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और दुर्योधन ने क्या किया है, पहले पांडवों की सेनाओं को देखा और अपने आचार्य जो उनके गुरु महाराज थे कौन, द्रोणाचार्य, उनके पास जाकर वचनम अब्रवीत यह शब्द कहे। तो क्या शब्द कहे वो आज बता रहे हैं, पश्यताम। पश्यताम मतलब देखिए, किसको बोल रहे हैं, अपने गुरु को बोल रहे हैं, देखिए पांडु पुत्राणाम, किसको देखिए, पश्यता मतलब पश्य मतलब देखिए, इस एता मतलब इस, और पांडु पुत्राणाम मतलब पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य, उनको बोल रहे हैं से बोले हे आचार्य जरा देखिए तो सही पांडव पुत्रों की सेना को। महतीम, महतीम का मतलब होता है बहुत विशाल, हालांकि उसकी सेना जो थी दुर्योधन की वो ज्यादा विशाल थी, लेकिन फिर भी पांडव पुत्रों की व्यूह रचना इतनी सुंदर थी कि वो विशाल नजर आ रही थी चमो मतलब सेना को। तो दुर्योधन ने अपने गुरु महाराज से कहा हे आचार्य पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। अब उसको प्रॉब्लम यही थी कि वो द्रुपद के पुत्र ने ही इसका व्यूह रचना किया था, व्यूढ़ाम मतलब व्यवस्थित किया था, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव शिष्येण, ये इसलिए कर पाया क्योंकि तुमने इसको ऐसी शिक्षा दी थी, क्योंकि वो तुम्हारा शिष्य था, धीमता अत्यंत बुद्धिमान, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और तुम्हारे द्वारा शिक्षित है, अपने गुरु महाराज को ऐसे बोल रहे तव शिष्येण, आपका शिष्य है, और उसने इतनी सुंदर से व्यूह रचना की है कि ये सेना बहुत ही विशाल दिखाई दे रही है। तो अनुवाद है दुर्योधन ने कह रहे हैं, ये दुर्योधन कह रहे हैं हमें क्या, वास्तव में यह श्लोक जो है वो संजय का काउंट किया जाता है क्योंकि संजय बता रहे हैं ना धृतराष्ट्र को, लेकिन डायलॉग्स किसके सेंटर में हो रहे हैं, दुर्योधन और द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को दुर्योधन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्योंकि संजय ने ऐसे बोला ना जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंसेस नहीं होते जो कि वो इस तरह अपने गुरु के पास गए और ऐसे शब्द कहे, तो ये कह रहे हैं दुर्योधन अपने गुरु से क्या कह रहे हैं, अनुवाद है हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, यानी कि आपके जो शिष्य ने इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है कि बहुत विशाल सेना दिखाई दे रही है, और उससे डर कर मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ, ये भी एक साथ में बता रहा है, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोष को इंगित करना चाहता था। राजनीतिज्ञ यानी कि अब वो दुर्योधन जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहा है और अपने गुरु महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोष को इंगित कर रहा है। दोष कौन सा, आगे बताएंगे श्री रूपा जी कि उन्होंने कौन सा दोष उनका था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ ना राजनीतिक झगड़ा था। क्या झगड़ा था मैं आपको बताऊं, पहले जब राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य जब छोटे थे ना बचपन में, वो एक ही गुरु के शिष्य थे, यानी दोनों क्लासमेट क्लास फेलो थे, एक ही शिष्य गुरु के साथ वो दोनों शिक्षा ले रहे थे। अब द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और द्रुपद राजा के पुत्र थे, लेकिन ब्राह्मणों को राजपुत्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती थी और दोनों ही एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अब जैसे एक ही क्लास फेलोज होते हैं, आपस में कैसी मित्रता हो जाती है। तो छोटे थे, अभी बिल्कुल छोटे से थे, और द्रोणाचार्य और द्रौपदी की मित्रता हो गई, बहुत मतलब बेस्ट फ्रेंड बन गए आपस के। और द्रौपद जो थे उन्होंने द्रोणाचार्य को बोला कि देखो आप ब्राह्मण हो ना, मैं आपका मित्र हूँ, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो आप रात को भी आ जाना, मतलब किसी भी टाइम पर मेरे पास आ जाना, मैं आपकी सहायता करूंगा, आप मेरे मित्र हो और मैं लाइफ टाइम आपके साथ मित्रता निभाऊंगा। जब हम यहाँ गुरुकुल से चले जाएंगे ना तो भी आप जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े, क्योंकि मैं राजा का बेटा हूँ तो आगे जाके मुझे राज करना है, तो आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप बस मुझे शेयर करना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आपको मेरे पास आना, बस मैं आपका दोस्त हूँ और इस मित्रता के अधिकार से आना मेरे पास, यानी भिक्षुक बनकर नहीं आना, मित्र मैं तुम्हारा मित्र हूँ तो मित्र बनकर आना मेरे पास और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। समय बीतता गया, गुरुकुल खत्म हुआ, विवाह हो गया द्रोणाचार्य का और उनको एक पुत्र पैदा हुआ द्रोणाचार्य को, जिसका नाम था अश्वत्थामा। लेकिन द्रोणाचार्य दरिद्र ब्राह्मण थे, उनके पास इतना धन नहीं था और अर्जित नहीं कर पाते थे कि वो अपने पुत्र को दूध पिला सके। एक बार अश्वत्थामा बहुत रो रहा था, उसको दूध पीना था, छोटा था और दूध पिलाने के लिए उसके पास धन नहीं था, तो उसको इतना दुख हो रहा था कि मैं अपने बेटे को दूध भी नहीं पिला सकता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि द्रौपद तुम्हारा राजा है और तुम्हारा मित्र है, तुम जाके उससे दूध के लिए गाय लेकर आओ, एक गाय होगी ना हमारे पास, रोज रोज हमारा बेटा रोता है और हम उसको दूध भी नहीं पिला सकते, तो तुम है ना उसके पास जाके, तुम्हारा दोस्त है, तुम दोस्त से तो हम ना ऐसे शेयर कर सकते हैं ना कि हमारी प्रॉब्लम है। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि हाँ ठीक है मैं जाता हूँ, बहुत मुश्किल में था तो वो गया और द्रौपद के पास। अब द्रौपद जो था उस समय बहुत बड़ा राजा बन गया था, अब वो बचपन की बात थी, उसे याद भी नहीं आया, तो उन्होंने द्वार पे जाके बोला, द्वारपाल जाओ द्रौपद को कहो तुम्हारा मित्र आया है। तो द्वारपाल उसकी यह दशा देखकर हैरान हो गया कि धोती फटी हुई मुंह मलिन है, ऐसा ब्राह्मण अगर भिक्षा लेने आया तो अलग बात है, लेकिन ये तो सब अधिकार कह रहा है कि मैं द्रौपद का मित्र हूँ। तो बोला पागल हो गए हो क्या। द्रोणाचार्य ने बोला नहीं, आप खाली जाके द्रौपद को ये बताओ कि आपका मित्र आया है जो गुरुकुल में आपके साथ पढ़ता था, द्रोणाचार्य आया है, तो आप खाली बोलो कि उसका मित्र आया, देखना वो कैसा रिएक्ट करता। तो द्वारपाल ने बोला चलो ठीक है मैं राजा को बोल देता हूँ। द्रौपद को जाके बोला कि आपका मित्र आया है। अब उस टाइम पर राजा था वो, और याद भी नहीं था उसको कि बचपन में हमारी क्या मैंने क्या कमिटमेंट किया था, कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर बोला चलो देखता हूँ। और फिर जब द्रुपद द्रोणाचार्य के समक्ष आए तो उनकी स्थिति, उनकी दरिद्रता को देखकर बोला आप भिक्षुक ब्राह्मण हो, आपको क्या चाहिए। तो बोला नहीं मैं भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं आपका मित्र हूँ और मित्रता के अधिकार से आया हूँ। जब द्रुपद ने ऐसा सुना बोला दिमाग सही है तुम्हारा, आप मैं आपका मित्र कैसे हो सकता हूँ, अपनी हालत देखो, अपनी हैसियत देखो, और मैं राजा, मैं आपका मित्र कैसे हो सकता हूँ, अगर आप भिखारी बनकर आए हो तो जो चाहिए मांग लो। तो द्रोणाचार्य ने बोला नहीं मैं अपने मित्र से एज अ भिक्षुक मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, आपको मुझे मित्र के रूप में स्वीकार करना है। तो बोला कि कौन से मित्र, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो फिर द्रोणाचार्य ने उसे याद कराया, याद करो बचपन में हम दोनों मित्र होते थे एक ही गुरुकुल में पढ़ते। तो द्रौपद ने उसका इतना मजाक उड़ाया, बोला तुम पागल हो गए हो, बचपन की बातों को याद रखता है, अब वो बचपन में नादानी में मैंने कह दिया तुमको, तुम अभी तक उसको संजो के बैठे हुए बात को, मैं कोई तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं हूँ और मैं से दोस्ती नहीं, लेकिन अगर आपको एज अ ब्राह्मण हो भिक्षा लेने आयो तो मैं आपको देता हूँ। तो इतना अपमान किया और उसको बोला पागल हो गया है, ये देखो इसको लोभ हो गया है, ताकि मेरा मित्र बनेगा तो मेरा राज्य पर अधिकार करेगा, ऐसे सबके सामने उसकी बहुत 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 इंसल्ट की। और फिर द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ, इतना ज्यादा दुख हुआ, उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि वह इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। समय बीतता गया, पांडव और कौरव ने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली, और जब शिक्षा ले ली तो फिर गुरु दक्षिणा के तौर पर पांडवों से और कौरवों से उन्होंने ये मांग की कि कोई द्रुपद को जीत कराए, यानी कि द्रुपद का पूरा राज्य जीत कराए। तो पांडवों ने कहा कि आप गुरु दक्षिणा है, क्योंकि यह शास्त्र का नियम है कि आप जो शिक्षा लेते हो ना, उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देना पड़ता है, मतलब दक्षिणा कुछ ना कुछ देनी पड़ती है। और जब तक अगर हम गुरु दक्षिणा नहीं देते ना, तो फिर जो हम ज्ञान प्राप्त करते ना अपने जीवन में, उसको सही तरह से उपयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए ना पांडवों ने कहा कि ठीक है, हम है ना गुरु दक्षिणा जरूर देंगे। और पांडवों ने द्रुपद को जीत लिया, गए और द्रुपद के साथ लड़ाई की और जीत लिया, और बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष लेकर आ गए। अब द्रुपद जो है वो इतनी मतलब बंदी बनकर आए हुए थे और हारे हुए, शिकस्त खाकर आए थे, और उसकी यह अवस्था देखकर द्रोणाचार्य ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि उसका उसको बदला लेना था ना, बहुत मजाक उड़ाया और बोला अब तुम्हारा पूरा राज्य मेरा है, अब तुम भिखारी हो और मैं राजा हूँ, तुम भिखारी बनकर मेरे पास आओ और है ना मेरे पास आओ, मतलब आकर अपना राज ले जाओ। लेकिन मैं, क्योंकि तुम्हारा ऐसा था ना, तुम ऐसा सोच रहे थे कि मैं भिखारी बनकर आऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं पहले भी तुम्हारा दोस्त था, अभी भी तुम्हारा दोस्त हूं, भले तुम भिखारी बन गए हो, अब मेरे सामने तो भिखारी बन गए हो ना, मैं राजा बन गया हूं, मेरे पास तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जैसे भिखारी के साथ भी दोस्ती करने के लिए तैयार हूं, मैं फिर भी तुम्हारा मित्र हूं, और मैं अपने राज्य का आधा भाग तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मित्र हो ना मेरे, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। देखो तुमने इतना मतलब मुझे नहीं दिया था कुछ भी, और एक दूध के लिए गाय भी नहीं दी थी, और है ना मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे रहा हूँ। देखो ये होता है भिखारी और राजा का अंतर, राजा का हृदय इतना बड़ा, मतलब बहुत इंसल्ट की इस तरह से उसको। अब द्रुपद क्योंकि क्षत्रिय था, वो इस अपमान को सह नहीं सका, फिर उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ क्यों किया कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इस द्रोणाचार्य की हत्या कर दे, मतलब इतना उससे द्वेष हो गया था, वो चाहता था कि मैं ऐसा बेटा पैदा करूं जो इस द्रोणाचार्य का वध कर दे। और उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ कुंड से यज्ञ सेनी द्रौपदी भी उत्पन्न हुई, और उनके साथ साथ उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था दृष्टद्युम्न। अब वो दृष्टद्युम्न क्यों उत्पन्न हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन का कारण क्या था, द्रोणाचार्य की मृत्यु। अब द्रुपद जो था उसने क्या किया, एक और चाल, क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा युद्ध में निपुण था और उसको बहुत ज्यादा युद्ध कला आती थी, तो उसने सोचा अगर कहीं और से मेरा बेटा शिक्षा लेगा तो द्रोणाचार्य के पैंतरे नहीं सीख सकेगा। फिर उसने क्या किया, दृष्टद्युम्न को शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा। अब वो मनुष्य, वो दृष्टद्युम्न जो पैदा ही उसको मारने के लिए हुआ है, किसको मारने के लिए, द्रोणाचार्य को। अब द्रोणाचार्य उसके गुरु बन गए थे और उसको सारी चीजें युद्ध की सारी कला उसको सिखानी थी, सिखाकर उसको पता था रिजल्ट में वो मुझे ही मारेगा। तो शिला प्रभुपाद जी श्लोक में बहुत सुंदर इसके विषय में बता रहे हैं कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर दे। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई भी झिझक नहीं हुई। अब गुरु था, वो गुरु था और ब्राह्मण था, उसका कर्तव्य था कि उसके पास जो भी शिक्षा लेने के लिए आए। गुरु तभी सार्थक होता है, गुरु होना तभी सार्थक होता है जब आप एकदम ऑनेस्टी के साथ आपको जो कुछ आता है वो अपने शिष्य को दे दो। गुरु का यह कर्तव्य होता है कि आपका जो शिष्य है उसको हर चीज बताओ जो कि आपको आती है। तो वो द्रोणाचार्य जो था, हालांकि उसको खबर थी कि दृष्टद्युम्न उसके मृत्यु का कारण बनने वाला है, लेकिन फिर भी उसने अपने गुरु का कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से निभाया। अब
धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा है। क्यों पांडवों का पक्ष ले रहा है? क्योंकि उस साइड पर तो द्रोणाचार्य था और द्रोणाचार्य को मारना ही उसके जीवन का लक्ष्य था, तो वो पांडवों के साथ हो। और दूसरा क्यों? क्योंकि वो द्रौपदी का भाई था और ये युद्ध हो रहा था, वास्तव में द्रौपदी का अपमान हुआ था। इसलिए वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये युद्ध इसलिए नहीं हुआ था कि द्रौपदी का अपमान, यह युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि नारी जाति का अपमान हुआ था। जो समाज अब ये ऐसा दुर्योधन ऐसा राजा बनता जो अपनी, अब देखो द्रौपदी क्या थी, अगर देखा जाए तो दुर्योधन की भाभी थी, वो कुल वधु थी उस कुरु वंश की। लेकिन जो कुरु समाज, जो राजा अपनी कुल वधु का सम्मान नहीं कर सकता, जो भरी राजसभा में उसको निर्वस्त्र करने के लिए तैयार हो गया, तो वो साधारण स्त्रियों का क्या सम्मान करेगा? ऐसे लोगों को, ऐसे अधर्मियों को मार देना चाहिए। वास्तव में ये व्यक्तिगत युद्ध नहीं था, ये समाजगत, ये पूरे समाज की रक्षा के लिए, पूरे समाज की नारियों की रक्षा, पूरे समाज के धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध किया जा रहा था। लेकिन फिर भी कारण तो द्रौपदी बनी थी और द्रौपदी का अपमान हुआ था, तो धृष्टद्युम्न उसका भाई था, तो डेफिनेटली उसके अपमान का बदला लेने का अधिकार था उसको। अब यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे हैं कि उस दिन द्रोणाचार्य, यहाँ पर बताया कि कोई द्रोणाचार्य को कोई झिझक महसूस नहीं। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पांडवों का पक्ष ले रहा है और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। अब ये द्रोणाचार्य के सारे शिष्य थे कौरव और पांडव, लेकिन द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा भी पांडवों ने दी थी और वैसे भी पांडव क्योंकि नीति बहुत, उनका बिहेवियर अच्छा था, धर्म के अनुसार थे, तो भले द्रोणाचार्य दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहा था लेकिन वो प्रेम तो पांडवों के साथ कर रहा था और उनका सर्वोपरि प्रिय शिष्य था अर्जुन। तो अब ये दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को शुरू में ही है ना सचेत कर देना चाहता है कि पहले भी तुम मैंने गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज ये व्यूह रचना हुई है, और ऐसा ना हो कि आगे जाकर भी तुम प्रेम के कारण, क्योंकि पांडवों से ज्यादा प्रेम करते हो, पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता नहीं दिखा देना, क्योंकि सामने वाला पक्ष आपको मारने के लिए आया है, आपकी कोई है ना उदारता को देखकर आपको बख्शने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो आपको मारेंगे, तो आप ऐसा करना, अपने हृदय के अंदर जितनी दुर्बलता है उसको खत्म करना और जो पहले गलती कर चुके हो एक धृष्टद्युम्न को, हालांकि तुम्हें मारने के लिए आया था उसको भी तुमने सिखाया, अब दूसरी गलती निर्बलता सोचकर या फिर उनके प्रति प्रेम को अपने हृदय में लाकर कहीं दूसरी गलती ना कर देना, मारे जाओगे। तो यहाँ पर बताया उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती। अब दुर्योधन जो है वो अपने गुरु को समझा रहा है कि अब क्योंकि अगर आपके हृदय में इस तरह की उदारता आ जाएगी अपने प्रिय शिष्यों के लिए, तो फिर सामने वाले लोग जो है वो आप पर आक्रमण कर लेंगे, किसी के हृदय में आपके लिए कोई सहानुभूति नहीं है, मारने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपके हृदय में दुर्बलता आ गई या प्रेम ने आप पर आक्रमण कर लिया तो हमारी हार हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।